ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को अपना बना करके कोड़ी से हीरे जैसा बना दिया। अपना समय, श्वास और संकल्प, तन मन और धन सब सफल करना सिखा दिया। और बाबा ने हम बच्चों को इस बेहद ड्रामा का राज समझा करके त्रिकालदर्शी बनाया। तीनों लोगों का ज्ञान दे करके तीनों लोगों में सैर करना सिखाया। साकारी दुनिया में रहते हुए हमारा जो असली घर है उसकी अनुभूति बाबा ने हम बच्चों को कराई। ईश्वरीय जन्म होते ही बाबा ने हरेक बच्चे को बर्थडे की गिफ्ट तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया। जिस तीसरे ज्ञान के नेत्र के खुलते ही हम सभी का जीवन परिवर्तित हो गया। क्षुद्र से ब्राह्मण बन गए, बाप दादा को पहचान लिया, अपने असली घर को भी जान लिया और अपने असली परिवार को भी जान लिया। बाबा ने हम बच्चों को इतना अथाह ज्ञान दिया जो उसका हम कभी वर्णन नहीं कर सकते हैं, परंतु बाबा के ज्ञान के द्वारा हम सभी की जीवन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार परिवर्तित हुई और हो रही। बाबा ज्ञान का सागर है, उसके पास अथाह ज्ञान है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों को रोज रत्नों से झोलियां तुम्हारी भरता हूं। बाबा तो हम बच्चों की झोलियां भरता है, परंतु हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी बुद्धि रूपी झोली में कहां छेद तो नहीं, क्योंकि अगर छेद है बुद्धि रूपी झोली में तो वो जो ज्ञान रतन है, ज्ञान अमृत है, वो बह जाता है। उसको हम अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते और धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। वर्तमान समय हम जो देख रहे हैं चारों तरफ, कभी किसी ने सोचा नहीं ऐसा अजीब नजारा सारी विश्व के ऊपर चल रहा। ऐसे समय पर जब समय हमारे विपरीत चलता है, ड्रामा की सीन घड़ी घड़ी बदलती रहती है, क्योंकि ये ड्रामा परिवर्तनशील है। हमेशा कहा जाता है कि सब दिन होते न एक समान। पहले भक्ति मार्ग में सिर्फ गायन करते थे, कहते भी थे कि सब दिन एक समान नहीं होते हैं, परंतु जैसे दिन बीतते थे, दिन परिवर्तन होते थे, वैसी हमारी स्थितियां भी परिवर्तित होती थी। बाबा ने हम बच्चों को परिस्थिति कितनी भी परिवर्तित हो जाए, ड्रामा में कोई भी सीन आवे, परंतु सीन को देखने के लिए साक्षी दृष्टि की ऐसी सीट दिया है जिस सीट के ऊपर बैठने के बाद साक्षी बन के जब हम इस खेल को देखते हैं तो हमारा जीवन जो है वो न्यारा और प्यारा बनता है। पहले हम जो ड्रामा की सीन देखते थे वो उसमें लिप्त होकर के देखते थे, न्यारे होके नहीं देख सकते थे। परंतु बाबा ने जो समझ हम बच्चों को दिया है उस आधार पर हम अपनी स्थिति को न्यारा बनाने के लिए साक्षी की स्थिति में स्थित होना सीख गए। क्योंकि परिस्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन बदलती जाती है, परिस्थिति बदले परंतु हमारी स्थिति नहीं बदले, इस बात का विशेष हरेक ब्राह्मण को ध्यान रहता है। क्योंकि दो चीजें हैं, एक है परिस्थिति और दूसरी है स्वस्थिति, दोनों के आने के रास्ते भिन्न भिन्न हैं। स्वस्थिति ये अंदर से आती है और परिस्थिति ये बाहर से आती है। जब दोनों के रास्ते भिन्न हैं तो दोनों का टकराव होने का चांस बहुत कम है। परंतु हम क्या करते हैं, चलते चलते जो स्वस्थिति के लिए समय देना चाहिए, जो स्वस्थिति के लिए शक्तियां लगानी चाहिए, परिस्थिति से उलझ करके हम अपना समय और शक्तियां उसमें वेस्ट करते। तो जब उसमें हम वेस्ट करते अपने समय और शक्ति को तो आत्माएं कमजोर हो जाती है और कमजोरी के कारण आत्मा के ऊपर परिस्थिति का वार हो जाता है। परिस्थिति बदले परंतु मेरी स्थिति नहीं बदले, ये जो हमारा लक्ष्य है इस लक्ष्य को कभी कभी कोई कोई भूल जाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को इस बेहद ड्रामा का ज्ञान दे करके न्यारा बनना सिखाया, क्योंकि ये जो विश्व का ड्रामा है ये कल्याणकारी ड्रामा है। हम बच्चों का कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि इस ड्रामा का डायरेक्टर हमारा बाप है। जब हमें ये निश्चय रहता है और कैसी भी बात होती है, कैसी भी परिस्थिति आती है, तो उसको मुकाबला करने की हमारे अंदर शक्ति स्वतः ही निर्माण होती है। क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल गुण शक्ति स्वरूप, और जब सर्वशक्तिवान को साथ में रखते हैं तो साकार बाबा को हमने देखा, कितनी भी परिस्थितियां आई, कितनी भी परीक्षाएं आई, परंतु बाबा सदैव अचल और अडोल रहा। बाबा सदैव अपनी सीट के ऊपर सेट रहा, क्योंकि संगम युग पर बाबा हम बच्चों को स्वराज अधिकारी बनाते हैं। राजा आकर अपनी सिंहासन के ऊपर सेट होकर के खेल को देखता है, अपने कर्मचारियों का ध्यान रखता है, उनको आर्डर करता है तो सब मानते हैं। तो बाबा की जो इतनी अचल और अडोल स्थिति रही और उसके साथ साथ मम्मा की, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि जैसे आकाश में तारामंडल है वैसे ये मेरा धरती का तारामंडल है, और इस तारामंडल में हम हमेशा वर्णन भी करते हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, ज्ञान चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा बाप है, और हम सब बाबा के लकी सितारे हैं, पर हम लकी सितारों में मम्मा ये ध्रुव सितारा। आप आसमान में भी देखेंगे तो सब सितारे अपनी जगह बदली करते हैं, परंतु ध्रुव सितारा जो है वो सदैव एक रस और एक ही स्थिति में रहता है, वो कभी अपनी जगह बदली नहीं करता। तो बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे ये ध्रुव सितारा है मम्मा, इसकी स्थिति कभी भी बदली नहीं होती। मम्मा की स्थिति बदली क्यों नहीं होती थी? क्योंकि मम्मा सदैव बाबा को फॉलो करती थी, मम्मा सदैव बाबा को देखती थी, बाबा के बगैर मम्मा किसी को भी नहीं देखती। हम बच्चों की स्थिति क्यों बदली हो जाती है? क्योंकि खुद को देखने के बजाय, बाप दादा को देखने के बजाय कभी कभी हम आसपास भी देख लेते। तो जब इधर उधर हमारी नजर चली जाती है तो स्थिति डगमग हो जाती है। तो इसीलिए अचल स्थिति बनाने के लिए सदैव हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ हमारी बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। मम्मा की अगर आप जीवन कहानी देखेंगे, मम्मा जिस समय पर बाबा के पास आई बहुत छोटी आयु में आई। मम्मा पहले दिन ही जब आई मम्मा बाहर चप्पल उतार रही थी, बाबा ने मम्मा को देखा, बाबा ऐसा गद्दी पर बैठे थे, बाबा ने देखा, बाबा ने कहा ये कल पहले वाली राधे आ गई। मम्मा ने जब ये सुना कि मैं ही राधे बनने वाली हूँ, उस घड़ी से लेकर के मम्मा ने श्री राधा बनने का पुरुषार्थ चालू किया। मम्मा कभी भी उस लक्ष्य से अलग नहीं हुई। आज सारे ब्राह्मण परिवार को और मम्मा बाबा को ये सबको मालूम था कि मम्मा ही श्री राधा बनने वाली है, बाबा जो है ब्रह्मा बाप ही जाके श्री कृष्ण बनने वाला है, परंतु उनको लक्ष्य इतना पक्का था कि हम ये बनने वाले हैं, पर उस बनने के लिए हमें पुरुषार्थ जरूर करना है। आज हम यहाँ जो भी बैठे हैं, हम किसी का भी पद मुकरर नहीं है, परंतु फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। और मम्मा बाबा को ये 100% सर्टन था कि हमारा यही पद है, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। ये पक्का होते हुए भी उन्होंने पुरुषार्थ में कभी ढिलाई नहीं किया। अगर हमें मालूम पड़ेगा ना कि हमारा नंबर फलाना आने वाला है, हम आराम से चादर लेके सो जाएंगे, अरे हमारा नंबर तो फिक्स है, उसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत। परंतु मम्मा बाबा ने कभी आलस नहीं किया पुरुषार्थ में। बाबा ने सदैव बच्चों को हर बात में आगे रखा, परंतु पुरुषार्थ में पहले मैं का जो ओटे स अर्जन, साकार बाबा कहते थे मैं ही अर्जन हूँ, मेरे को ही उठना है, मुझे ही करना है, मुझे औरों को करके बताना। तो जैसे बाबा को सदैव ये लक्ष्य रहा कि जैसा कर्म मैं करूंगा मेरे को देख के और करे गए, वैसा ही हम सभी के पीछे बहुत लंबी क्यू है, चाहे कोई प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे सेवा स्थान पर रहते हैं, परंतु हमारे को फॉलो करने वालों की बहुत लंबी क्यू। हमारा ब्राह्मण परिवार भी हमको देखता है, अज्ञानी भी देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, सारी विश्व देखती है कि ये कहाँ चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि आप ऐसा नहीं समझो मैं फलाने स्थान पर रहता या रहती हूँ, सदैव ये समझो कि हम विश्व की स्टेज के ऊपर। तो जो विश्व की स्टेज के ऊपर होगा, स्टेज वालों को अपने ऊपर कितना अटेंशन रखना पड़ता है। स्टेज में कोई झाड़ू लगाने वाला भी होगा ना, सब उसको ही देखेंगे इसने झाड़ू ठीक लगाया या नहीं लगाया। और नीचे उतर के कोई राजा का भी पार्ट प्ले करता होगा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। स्टेज का इतना महत्व होता है। तो हम जो विश्व की स्टेज के ऊपर है, तो हमारे तरफ सबकी नजरें हैं, और सबसे ज्यादा नजर तो हमारे ऊपर बाबा की। बाबा देखता है कि जिन बच्चों को मैंने निमित्त बनाया है, जो सेवा के लिए निमित्त है, जो प्रवृत्ति में रह के निवृत्त रह करके बताने वाले हैं, जो सारे विश्व को चैलेंज देने वाले हैं कि जो किसी ने नहीं किया वो हमने करके बताया है, हमने अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाया है, तो बाबा देखता है कि वो बच्चे कहाँ तक अपना पार्ट प्ले कर रहे। तो इसीलिए हमें खुद के ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता है। स्थिति को अचल बनाने के लिए अटेंशन की बहुत जरूरत। जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, उतना उतना हमारी स्थिति जो है वो ऊंची बनती जाती है, क्योंकि ये बहुत ऊंची चाड़ी है। जब कहां पहाड़ी पर चढ़ना होता है, ऊंचा जाना होता है, तो बहुत संभल संभल के कदम रखने पड़ते हैं। बाबा कहते थे, बच्चे ये रास्ता बड़ा तिरकना है, तिरकना माना खिसकने वाला, तुम पैर रखो तो खिसकेगा, इसीलिए तुम्हें बहुत संभाल के चलना है। और बाबा ने हमें ड्रामा का ये राज बताया हुआ है कि संगम युग जो है, संगम युग ये ड्रामा की शूटिंग का समय। बना बनाया ड्रामा जरूर है, परंतु बने बनाए ड्रामा के प्लान अनुसार ये संगम युग ऐसा शूटिंग का समय है। जो कर्म अब हम करते हैं, जो पाठ हम बजाते हैं, वही हमारा पाठ कल्प कल्प बजता है। जिस प्रकार किसी ड्रामा की या पिक्चर की जब एक्टर शूटिंग करते हैं, वो बहुत अलर्ट रहते हैं, उनका अपने ऊपर बहुत ध्यान रहता है, क्योंकि जैसा तुम्हारा पट शूट होगा वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। इसीलिए दूसरे क्या करते हैं उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, उनका ध्यान इस बात की तरफ होता है कि मेरा जो पार्ट है वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो वो खुद की तरफ पूरा ध्यान दे करके अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो वैसा ही ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इस समय ये बेहद का ड्रामा शूट हो रहा है। डायरेक्टर हम सभी के सामने हैं, तो हमारा काम है खुद का पार्ट ऊंचे से ऊंच बनाना। हमें दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि बाबा ने हमको इस सृष्टि के ऊपर एज ए एक्टर करके भेजा हुआ है कि तुम एक्टर हो इस ड्रामा के, इंस्पेक्टर बना के नहीं भेजा है। दूसरों को देखना नहीं सिखाया है, हमें खुद को देखना सिखाया। तो जब ये बात हमारे ध्यान में रहती है, तो हमारा जो भी हमारी जो भी एक्ट है वो यथार्थ चलती है, और जो सीन हमारे सामने आती है उस सीन को हम साक्षी होकर के देखते हैं। साक्षी स्टेज जो है ये हीरा भी बनाती है, और इस ड्रामा में हीरो पार्ट भी बजाने को लगाती है। ये स्थिति बड़ी अच्छी स्थिति है, ये बड़ी न्यारी और प्यारी स्थिति है, जिस स्थिति में स्थित होने के बाद हमारा बहुत ऊंचा पार्ट ड्रामा के अंदर नूंद होता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बच्चे तुम साक्षी दृष्टिया होकर के खुद के पार्ट को भी बजाओ और दूसरों के पार्ट को भी साक्षी होकर के देखो, और ड्रामा की जो भी सीन देखते हो उसको भी साक्षी होकर के देखो। जैसा आपको मालूम होगा, कोई व्यक्ति ड्रामा देखता है, पिक्चर देखता है बैठ करके, देखने के समय उसकी स्थिति वास्तव में साक्षी की होनी चाहिए, न्यारी होनी चाहिए, परंतु कोई कोई क्या करते हैं, देखते देखते रोने की सीन आएगी, रोना चालू कर देगी। कोई कोई तो क्रिकेट देखते देखते किसी का हार्ट फेल हो रहा, अरे तुम्हारा क्यों हार्ट फेल हो रहा, भारत हार गया इसीलिए ये मर रहे, भारत हार गया तो तुम्हारा क्या गया ये तो बताओ, फलाने एक्टर का ये हो गया फलाने का ये, मतलब इसमें साक्षीपन की स्टेज को छोड़ने के बाद उसकी रिजल्ट बड़ी खराब होती। अभी वास्तव में ड्रामा या पिक्चर जो देखते हैं वो मनोरंजन के लिए देखते हैं, परंतु साक्षी की स्टेज न होने के कारण मनोरंजन के बदले उनके मन में रंज हो जाता है, दुख हो जाता है, दुख की सीन आएगी तो दुखी हो जाएंगे। तो वैसा ही अगर हम भी इस बेहद नाटक को देखते हुए, इस बेहद नाटक में पार्ट बजाते हुए अगर साक्षी होकर के नहीं देखते हैं तो जैसी सीन आएगी, जैसी परिस्थिति आएगी, वैसी हमारी स्थिति हो जाएगी। और बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि इस ड्रामा में जो भी होता है अचानक होता है, हम सभी के आगे अमीर चंद भाई ने भी पाठ पक्का कराया हम सभी को कि कैसा अचानक हो जाता है जो होता है, वो बोल के नहीं होता है पहले से, बाबा कहते थे बच्चे जो ड्रामा है। एक बार ऐसा ही मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था तो कोई महारथी बहन थी बाबा के साथ बगीचे में टहल रही, तो ये ऐसी सीन तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, तो बाबा से बात कर रही थी, बाबा को कहा बाबा कोई कोई सीन ना ड्रामा में नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्ची ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसको करेक्शन करने की और इसमें एडिशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्रामा के पट्टे पर चलने की आवश्यकता है। जैसा देखो ट्रेन पट्टे पर चलती है तो ठीक चलती है, अगर पट्टा छोड़ करके चलती है रेंट हो जाती, तो वैसे ही हम ब्राह्मणों के लिए ड्रामा ये एक पट्टा है, इस पट्टे पर अगर हम चलते हैं तो हमारी स्थिति एकदम ठीक रहती है, परंतु अगर पट्टा छोड़ करके हम चलना चालू कर देते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, उससे हमें खुशी की प्राप्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती, पर दुख की प्राप्ति होती। बाबा ने हम बच्चों को बताया ड्रामा माना क्या, फुल स्टॉप। जो भी सीन होती है उसको क्या करो, बीता बीती सोती ये दुनिया नहीं जीती, फुल स्टॉप लगा दो। अगर कोई बात होती थी और कभी बाबा के सामने बाबा ऐसा हो गया, बाबा बोलता था ये भी ड्रामा की विस्मृति, ये जो आश्चर्य होता है ना, वास्तव में आश्चर्य का चिन्ह भी ये भी विस्मृति है ड्रामा के, कोई नया थोड़ा ही हुआ है, ये कल पहले के माफी की हुआ। तो जब ड्रामा की पॉइंट हमको इतनी पक्की हो जाती है, हमारी स्थिति अचल और अडोल बन जाती है कि जो भी होगा वो कल्याणकारी होगा, जो भी होगा वो कल पहले के माफी को, जो उससे हमारा फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। जब इतनी गारंटी हमारे को, जितना बाबा के ऊपर निश्चय है उतना ही अगर ड्रामा के ऊपर हमारा निश्चय है तो हमारी स्थिति परिपक्व बन जाती है। अगर ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं, सिर्फ बाबा के ऊपर निश्चय है तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो भी पड़ती है ये सब साइड सीन्स है। आज देखो कोई भी व्यक्ति है उसको कहां भी जाना होता है, किसी भी से जावे, प्लेन से जावे, ट्रेन से जावे, बस से जावे, हर एक कोई कौन सी टिकट खरीद करता है, हर एक कोई समझता है कि मेरे को विंडो वाली सीट मिलनी चाहिए, क्यों, क्योंकि साइड सीन देखने को मिलती, साइड सीन देखने से खुशी होती है। तो जैसा वो साइड सीन देख करके खुश होते हैं हम, वैसे वैसा ही ड्रामा में जो परिस्थितियां आती है वो भी सब साइड सीन्स, क्योंकि हम तो अपने रास्ते पर से चल रहे हैं, ये सब कुछ होना है, हमने कोई नया रास्ता नहीं ढूंढा हुआ है, जिस रास्ते से बाबा चला है हम भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। आप बताइए, समझो मैं वरदानी से इधर आती हूँ, तो मैं जिस रास्ते से आई आप भी उसी रास्ते से आएंगे, तो रास्ते में जो मेरे को सीनरी दिखाई पड़ी, जो बिल्डिंग दिखाई पड़ी, जो समझो कोई भी वस्तु दिखाई पड़ेगी, आपको वही दिखाई पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार बाबा जिस रास्ते से गए, बाबा के आगे जो परिस्थितियां आई वो जरूर आएगी, क्योंकि हमारा रास्ता भी वही है। परंतु उन परिस्थितियों को देख करके बाबा हलचल में नहीं आया, बाबा उनको देख करके अचल रहा, बाबा ने मनोरंजन किया। यहाँ तक जिस समय पर सिंध हैदराबाद में इतना घमसान चलता था और चलते चलते बीच में कभी बंद हो जाता था, बाबा कहता था ये सिंध वालों को क्या हुआ, कुछ करते नहीं, बाबा मनोरंजन करता था इन बातों। और आज देखो हमारे वो सामने अगर परिस्थिति क्या होती, क्या हम हलचल में आते हैं? तो हमारी स्थिति को, हमारे को अचल बनाने के लिए फॉलो फादर करने की आवश्यकता है कि अगर हमारी जगह पर बाबा हो गए तो बाबा की स्थिति कैसी थी, फिर हमारी स्थिति इतनी हलचल में क्यों? क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, परिस्थिति को डायरेक्ट अपने से कर लेते। देखो जैसा मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, ऊपर से छत गिरती है और मेरे सिर पर लगेगी तो क्या होगा, मेरा सिर फूट जाएगा। परंतु छत और मेरा सिर अगर इसके बीच में और कुछ है तो क्या हो जाएगा, मेरा सिर बच जाएगा। तो उसी प्रकार परिस्थिति और हम, इसके बीच में अगर ड्रामा को रखते हैं तो उस परिस्थिति का डायरेक्ट मेरे ऊपर वार नहीं हो सकता। परंतु हम उस समय पर क्या करते हैं, ड्रामा को भूल जाते हैं और उस परिस्थिति को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और डायरेक्ट आके हमारा मत्था फोड़ डालती है, हमारी स्थिति को खराब कर डालती है। फिर क्या कहेंगे, क्या करें, स्थिति परिस्थिति ऐसी थी ना, हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है परंतु परिस्थिति ऐसी थी इसीलिए स्थिति खराब हुई। अभी इसको क्या कहा जाए, परिस्थिति अच्छी है पर स्थिति अच्छी है पर परिस्थिति खराब थी इसीलिए मेरी स्थिति खराब हुई, उसको अच्छी स्थिति कहेंगे या कमजोर स्थिति कहेंगे? अगर हमारी स्थिति परिपक्व है, हमारी स्थिति अचल है, तो परिस्थिति कैसी भी होवे, कितनी भी बड़ी होवे, उसका हमारे ऊपर असर नहीं हो सकता है। अगर सचमुच परिस्थितियों का असर होता है तो हमारे आगे जो आदर्श है उनको हमने देखा, उनके ऊपर असर नहीं होता है तो हमारे ऊपर क्यों होता? तो एक रस स्थिति रखने के लिए, ऊंची स्थिति बनाने के लिए हमारे को सदैव ये ख्याल में रखना है कि परिस्थिति कोई भी आवे आप उसके सामने खड़ा होके देखो नहीं, आप देखते रह गए ये ऐसा हो गया ये ऐसा हो गया, सोचते रह गए, बात इतनी होती है पर उसको सोच सोच के इतना लंबा कर देते, रबड़ जैसी है बात, आप जितना खींचेगे ना रबड़ को, जितना तानेंगे उतना तनती है। तो वैसा कोई भी बात या परिस्थिति आप जितना खींचेगे ना उतनी बड़ी होती जाएगी, आप उसको छोड़ दो देखो आप ही ठीक हो जाएगी। तो ये जो थोड़ी बाबा ने हम बच्चों को युक्तियां बताई हुई है, उन युक्तियों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी स्थिति को ठीक रख सकते, नहीं तो जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगी वैसी वैसी स्थिति बदलेगी। बाबा इसको कहते थे छुई मुई की स्थिति, छुई मुई का झाड़ होता है ना लज्जावंती का, आप उसको हाथ लगाओ ऐसा हो जाएगा, हाथ ऐसा करो खुल जाएगी, उसके पत्ते खुल जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति, माया ने फूक मारी, कोई परिस्थिति आई, मुरझा गए, उदास हो गए, खुशी गायब हो गई, अरे क्या हो गया, भगवान मिला है खुशी कहाँ गई तुम्हारी, परिस्थिति ऐसी आई और परिस्थिति थोड़ी ठीक हो गई फिर खुश हो गए। अभी आप देखो घड़ी घड़ी अगर ट्यूबलाइट ऐसे बंद होती है खुलती है, आपको अच्छा लगता है, कितना बेजार हो जाते हैं, अरे बंद कर इसको, इससे तो अंधेरे में बैठना अच्छा है। तो ये जो स्थिति घड़ी घड़ी कभी उदास कभी खुशी कभी गमी, ये जो स्थिति है ये हैरान करने वाली स्थिति, इससे बेजार होते हैं, खुद भी बेजार होते हैं, साथ वाले भी बेजार होते हैं। इसीलिए हमारी स्थिति सदैव एक रस रहे। तो एक की अगर याद है और उसने जो जो हमें युक्तियां दी हुई है, बाबा कहते हैं तुम युक्तियों को इस्तेमाल नहीं करते हो, इस्तेमाल नहीं करते हो इसीलिए तुमको कमजोरियों से मुक्ति नहीं मिलती। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को बाबा के ज्ञान को घड़ी घड़ी रिवाइज करना पड़ेगा, स्मृति में रखना पड़ेगा। जब तक स्मृति में नहीं रहेगा तब तक हमारे अंदर समृद्धि ही नहीं आ सकती। सुनने को तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सुनाना भी अच्छा लगता है, परंतु सुनाने के पहले सुनने के बाद वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाए, उसको हम अपने लाइफ में धारण कर लेवे, उसके लिए उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता। बाबा हमेशा कहते थे, बाबा कहता था अरे तुम्हारे में वो गाय जितनी भी अक्ल नहीं है, गाय घास खाती है, एक घंटा घास खाएगी सारा दिन मुंह हिलाती रहती है, रवंथ करती रहती। अगर वो रवंथ नहीं करेगी ना तो उसको पचेगा नहीं घास, उसको उसका खून नहीं बनेगा, उसको ताकत नहीं आएगी। तो वैसा ही ज्ञान एक शक्ति है, परंतु वो शक्ति का रूप कभी लेती है जब हम विचार सागर मंथन करते हैं, जब हम उसके ऊपर विचार करते हैं, विचार करके उसको हजम करते हैं, वो ज्ञान शक्ति का रूप ले लेते। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्माएं पसंद है, ज्ञानी तू आत्माएं प्रिय है, गीता में भी है, हे अर्जुन मुझे ज्ञानी तू आत्माएं प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा माना ज्ञान को जिन्होंने धारण किया है वो बच्चे मुझे प्रिय है। सिर्फ ज्ञान सुनने और सुनाने वाले नहीं, पर ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को स्वरूप में लाने वाले। तो जिस चीज को हम स्वरूप में ला लेते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर कैसी भी परिस्थिति आएगी तो हमारी स्थिति हलचल में नहीं आएगी, हमारी स्थिति जो है वो स्थिरम हो जाएगी, अचल हो जाएगी। नहीं तो जैसी जैसी हवा चलेगी उधर हम भी चलते रहेंगे, जैसी परिस्थिति आएगी वैसी स्थिति हमारी भी होगी। दो दिन पहले की मुरली आप लोगों को याद होगी, बाबा ने कहा अरे फलाने ने शरीर छोड़ा पर तेरा क्या गया, तू क्यों रो रहा, एकदम डायरेक्ट ऐसा ही बोला। मैं बोला देखो बाबा कितना ठोकता है बच्चों। बोला उसने शरीर छोड़ा, बाबा ने कहा पर तेरा क्या गया ये तो बता। तो बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों के ऊपर जैसा थोड़े मार मार के पक्का कराता। तो इसीलिए एक तो हमें साक्षी बनने की आवश्यकता है स्थिति को अचल बनाने के लिए, दूसरा अभी ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें वापस घर जाने का है। अभी जब वापस घर जाना है हमें तो उसके लिए तैयारी भी तो करनी है ना। तो अगर सदैव ये तात लगी रहती है ना तो सब तरफ से हमारी बुद्धि जो है वो क्या होती है, धीरे धीरे उपराम होती जाती है। किन बातों में भी फालतू बातों में बुद्धि जाएगी नहीं, क्योंकि अभी तो घर जाना है, जहाँ जाना होता है उस स्थान की याद रहती है, जो छोड़ना होता है उस स्थान की याद नहीं होती है। अभी आपको मधुबन आना था तो आपको सदैव यही याद होगा हमको मधुबन जाना है मधुबन जाना है। तो हमें घर जाना है। हमने देखा मनमोहिनी दीदी का भी लास्ट लास्ट में एक ही बात दीदी को पक्की हो गई थी, अब घर जाना। हम दीदी से मिलते थे ना तो हम लोगों को तो यही आदत है, मिलेंगे तभी भी ओम शांति कहेंगे, फिर जाएंगे तभी भी ओम शांति कहेंगे। दीदी बोलती थी ओम शांति क्या करते, जब भी मिलो तभी ओम शांति बोलो, जब भी जाओ तभी बोलो अब घर जाना। उसी समय ये गीत बना, आदि अंत का मंत्र यही है अब घर जाना। तो तो धीरे धीरे देखा एकदम जैसे उपराम होते गए, बाबा को भी देखा धीरे धीरे एकदम उपराम होता गया, नहीं तो बाबा को सब बातों में इंटरेस्ट था, बच्चों को हंसाता था, बहलाता था, खेलता था बच्चों के साथ, पर धीरे धीरे एकदम इतनी अंतर्मुखता को धारण किया, धीरे धीरे एकदम उपराम होता गया, न्यारा होता गया, एकदम न्यारा होता गया। कोई सुनाएगा ना समाचार तो भी ऐसा सुनता था जैसा सुन ही नहीं रहा। पहले हम लोग आते थे बंबई से तो बाबा को सारा समाचार सुनाते थे, बाबा वहाँ ये सेवा किया, बड़ा खुशी खुशी से सुनाते थे और बाबा बैठ के सुनता भी था, ये हुआ बाबा, ऐसा हुआ, वो हुआ, फिर कोई ये समझो महात्मा आया उसने उसका प्रवचन हुआ, उधर गए वो उसने ऐसा बोल, सब सुनता था बैठ। फिर लास्ट में क्या हुआ, एक बार ऐसा ही आए थे हम सब, बॉम्बे से आई थी बहनें सब आई, तो बाबा को सुना रही थी, एक बहन सुना रही थी, बाबा ये हुआ फलाना आया, ज्ञानंद आया, ये हुआ, उसने सुनाया मतलब समाचार सुनाया वहाँ। बाबा तो ऐसा सुन रहा था जैसे है ही नहीं वहाँ। फिर सुनते सुनते बोला ये सारा बम्बई का कचरा लेके इधर आई है, बोला अरे उठ के ऐसे बे हम वहां से बात मत पूछो। बोला सारा बम्बई का कचरा इधर लेके आई डाल देंगे, तो कचरा लगता था उसको, फालतू बात कचरा लगता। तो वैसा ही जितना जितना हमारी स्थिति उपराम होती जाती है ना, तो उतना उतना स्थूल बातों में इस दुनिया की बातों का इंटरेस्ट खलास होता जाता। और हम सभी का लक्ष्य तो यही है ना कि हमें वापस जाना है, हमें उपराम होना है और बाबा के पास जाना है, तो बाबा जैसा तो बनना है हम सभी को, चाहे प्रवृत्ति में रहते। बाबा ने देखो कितनी अच्छी युक्तियां बताई है कि तुम प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहो, स्थिति को तुम्हारे को अचल बनाना है, उसके लिए तुम्हें निवृत्त रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारी माताएं या भाई या हमारे फलाने के बुद्धि का ताला खोलो बाबा, फलाने का कल्याण होना चाहिए, जब तुम ये समझते ना कि ये हमारे हमारे पति के बुद्धि का ताला खुले इसका करे, ये स्वार्थवश नहीं करो, सर्व के लिए तुम योगदान दो, तो उसमें तो वो भी आ जाएगा ना, उसका भी ताला खुल जाएगा आप समय के अनुसार। बाबा ने कहा देखो तुम प्रवृत्ति में रहो, पर प्रवृत्ति में रह करके ये समझो कि हम सेवा स्थान पर रहे पड़े, तो जब सेवा स्थान पर रहे तो तुम्हारा काम क्या है, सेवा करना तुम्हारा स्थान, ये भी बाबा के बच्चे हैं, नफरत नहीं करो किसी से भी, ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है उनका कल्याण करने के लिए उनसे नफरत नहीं करो, उनके ऊपर रहम करो, उनमें मोह नहीं रखो परंतु रहम जरूर करो, उनका कल्याण करने के लिए उनको तुम क्या करो, बाबा का संदेश दो, संदेश नहीं सुनते तो कोई हर्जा नहीं, वैसे घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है ना, सुनते नहीं है, कहेंगे बस कर तू बहुत सुन लिया थे, इसीलिए प्रवृत्ति वालों को सेवा करने के लिए बाबा ने बताया तुम अपने जीवन में परिवर्तन करो, जैसा जैसा हमारे जीवन में परिवर्तन आता है ना तो उसका असर उनके ऊपर होता है, अगर परिस्थिति में उन्होंने रोना चालू कर दिया और तुमने भी रोना चालू कर दिया तो क्या हो जाएगा, अपने क्या असर पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा ना? तो हमारी जो एक्टिविटीज है, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा जो है वो कर्मों की सेवा है, कर्मों के द्वारा हम सामने वालों को चेंज कर सकते हैं, उनके जीवन के द्वारा हम अपने जीवन को उनका जीवन बना सकते हैं, जीवन के द्वारा हम लोग भी जो आए तो किस आधार पर आए, आप भी किसी को देख करके पीछे आ रहे इनका जीवन इतना अच्छा है हम भी ऐसा बनावे, मम्मा को देखा, बाबा को देखा, दादियों को देखा, बहनों को देखा, इनका जीवन इतना अच्छा है हमारे को भी ऐसा ही जीवन बनाना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा तो है, वाणी की सेवा तो है, परंतु कर्म की सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है, इसीलिए निवृत्त रहना सीख जाओ, साक्षी होके देखना सीख जाओ, ज्ञान के मनन चिंतन में लगे रहो, व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जब व्यर्थ समाप्त हो जाता है तो स्थिति एक रस हो जाती है, व्यर्थ चलता है तो स्थिति डगमग होती है, कोई भी बात होती है, अच्छा हम किसी भी बात के लिए सोचते हैं, सोचने से ठीक नहीं होती। आप खुद को ठीक कर डालो, बात आप इस समय के अनुसार ठीक कर देगी। कि कोई बातें ऐसी होती है हमारे ठीक करने से ठीक होती है, और कोई बातें ऐसी होती है ठीक करने से ठीक नहीं होती है, परंतु समय उनको ठीक कर देता है। इसीलिए ड्रामा में एक गुण जरूर हमारे अंदर चाहिए, वेट एंड सी, ठहरो देखो, उतावला पना नहीं करो। तो ठहरेगे और देखने का अगर धीरजता का गुण हमारे अंदर आ गया ना, तो स्थिति एक रस बनती जाती। अगर धीरजता नहीं है तो स्थिति एक रस नहीं होती है, अचल नहीं होती है, स्थिति डगमग होती रहती, सहन नहीं कर सकते, कोई भी बात आएगी तो सहन नहीं कर सकते। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे धीर्यवत हो जाओ, गंभीर हो जाओ, तो कोई भी परिस्थिति आएगी उसको देखते हुए भी नहीं देखो, आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि साइड सदा के लिए थोड़ी, साइड सीन उसको ही कहा जाता है जो पासान हो जाती है। तो परिस्थितियां पासान हो जाती है, उसमें हम क्यों अपनी स्थिति को ऊपर नीचे करें, हम भी उससे आगे बढ़ जावे ना। वो तो उधर ही रहेगी, हम आगे चले गए तो परिस्थिति पीछे रह गई। पीछे मुड़ करके देखना नहीं कभी भी। वैसे शास्त्रों में बताते हैं ना, जब ये पांडवों ने विजय प्राप्त कर लिया और पहाड़ों के ऊपर गए तो उनको कहा तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो गल के मर जाएंगे, पीछे से तुमको आवाजें आएगी बहुत, परंतु पीछे मुड़ के नहीं देखना। और उन्होंने पीछे मुड़ मुड़ के जिसने देखा सब मर गए, एक वो धर्मराज बाकी बच गए। है हम लोगों की बातें ये, हम भी तो बहुत ऊंची झाड़ी चढ़ती, पीछे से बहुत सारी आवाजें आती हैं, उन आवाजों को कभी भी सुनो नहीं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने, अरे काय का आवाज सुन रहे, तुम बाबा की तो आवाज सुनो। बाबा कहता है क्या तुम्हारे को अभी समय इतना नाजुक चल रहा है, किसी समय भी कुछ हो सकता है, तो क्या तुमको भक्तों की आवाज नहीं आती है, जो बिचारे कितने तड़फ रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, तुमको दुखी आत्माओं की आवाज नहीं आ रही है जो तड़फ रही है दुखों में। अभी हमको आवाज कहाँ से आएगी, जब हम ही आवाज में होंगे तो हमको आवाज कहाँ से आएगी। अभी समझो मैं बोल रही हूँ, कोई मेरे को आवाज देता है तो आवाज नहीं आएगी ना, क्योंकि मैं ही बोल रही हूँ। तो वैसा अगर हम आवाज की दुनिया में ही रहने की हमारे को प्रैक्टिस है, तो हमारे को ये दुखी आत्माओं की आवाज नहीं आती। अभी तो हमको उनकी आवाज आनी चाहिए, तभी तो हम उनके ऊपर रहम करेंगे, तभी तो उनके ऊपर मेहर करेंगे। बाबा कितनी कितनी रात नहीं सोता था, बाबा को पूछे बाबा आज आपको नींद नहीं आई, बाबा कहता था कैसा नींद आएगी, बांधेलियां रो रही है, तड़फ रही है, भगत चिल्ला रहे हैं, वो आवाजें आ रही है बाबा। तो बाबा को आवाज सुनाई पड़ती थी, हम लोगों को आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ती। तो उसके लिए हमको आवाज से परे जाना होगा, तभी तो हमको आवाज सुनाई पड़ेगी। बाबा जो घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आत्मा अभिमानी हो जाओ, अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बन गए तो आवाज की बात ही नहीं है ना, आवाज की दुनिया से परे जा सकते। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी युक्तियां बताई हैं, परंतु हम वो युक्तियां भूल जाते हैं, जिसके कारण आवाज में आकर के अपनी स्थिति को ऊपर नीचे कर लेते हैं। अगर आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारी स्थिति जो है वो परिपक्व बनती जाती, पक्की होती जाती, आगे बढ़ते चलो, पीछे पीछे का पीछे रहा। दुनिया को जीतना तो है ना, बीती सो बीती, ये दुनिया नहीं जीती, पर हम तो दुनिया को जीतते क्या है, परंतु इसको परिवर्तन कर डालते हैं। पर उसके पहले हमें खुद का परिवर्तन करना है, खुद की स्थिति को ऐसा बनाना है जो और हमें देख करके फॉलो कर सके। बाबा ने हम बच्चों को आप समान बनाने की बात बताई है ना, तुम बच्चों को मेरे समान बनना है। तो बाप समान बनना है माना कैसा बनना है, एक रस स्थिति में रहना है, अचल अडोल स्थिति में रहना है, परिस्थितियों का सामना करने की भी जरूरत नहीं है तुम्हारे को। परिस्थिति बाबा ने बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर कितनी अच्छी युक्तियां बताई है। जब कोई भी परिस्थिति आवे ना, तुम ऊंची स्थिति में चले जाओ। आप देखो प्लेन में से अगर आप देखेंगे ना, आपको बड़े 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 जो इतनी खेतियां हैं ना, ऐसे इतने जरा जरा ऐसे टापू दिखाई पड़ेंगे कुछ। बड़े बड़े बांध जो है वो भी ज्यादा ऊपर जाएंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, नहीं तो छोटा छोटा दिखेगा। ये बिल्डिंगे बिल्डिंगे कुछ भी नहीं दिखेगी। तो उसी प्रकार अगर कोई भी बात आती है, अगर हम अपनी ऊंची स्टेज में चले जाते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और ऊपर से फिर उस बात को देखते हैं, तो वो बात कुछ भी नहीं लगती। पर हम लोगों को आदत क्या है, हम उसके सामने खड़े होकर देखते हैं, इसीलिए हमको छोटी बात भी बड़ी दिखाई पड़ती। तो इसीलिए ऊपर उड़ना सीखो। और उड़ कौन सकता है जो हल्का होता है? हल्की चीज ऊपर जाती है, भारी चीज नहीं जाती है। तो बाबा ने हम बच्चों को डबल लाइट बनाया हुआ है। डबल लाइट बनने के लिए कर दो सब ईश्वर के हवाले। जब सब कुछ उसके हवाले कर देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? प्लेन हो जाते हैं, एकदम हल्के हो जाते हैं। सब कुछ उसका है, सिर्फ कहो नहीं परंतु प्रैक्टिकल में अपनी स्थिति को देखो कि हम सचमुच बाबा का समझ करके और बाबा के अर्पण करके चल रहे हैं या मेरापन है। अगर मेरापन होगा तो उड़ नहीं सके। अगर बाबा के अर्पण कर दिया हमने सब कुछ तो सहज होगा उड़ना। बाबा कहता है ये तन भी तेरा नहीं है, तुमने क्या किया? हमारा पहला वायदा क्या है? तन मन धन सब कुछ तेरे अर्पण। पहले तो तन उसके अर्पण किया ना, फिर देखो ये तन कौन से कार्य में लग रहा हमारे, उसके कार्य में लगता है, मन उसके कार्य में लगता है, धन उसके कार्य में लगता है। तो जितना जितना हम उसके हवाले करते जाते हैं उतना उतना हम लाइट होते जाते हैं, और जितना लाइट होते हैं उतना हम ऊपर जा सकते, सहज जा सकते हैं। तो फिर जब ये हमको ऊपर जाने की प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर नीचे की बातें जो है वो हमको खींच नहीं सकती। कोई भी चीज जब स्पेस में चली जाती है ना बहुत ऊपर, तो उसको ये धरती का आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। धरती में तो आकर्षण है ना। बाबा क्यों कहता है अशरीरी बनो? अशरीरी बनो इसीलिए कहता है, तुम शरीर के भान में आते हो तो क्या करते हैं? ऊपर जाने की कोशिश करेगी, शरीर अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये मिट्टी का पुतला है। मिट्टी में आप लोगों को मालूम है, धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, खींचने की ताकत है। तो ये मिट्टी का पुतला है, ये हमारे को ऊपर से नीचे खींचता है। परंतु हम उड़ करके ऊपर चले जाते हैं तो फिर इसका आकर्षण खलास हो जाता है। तो बाबा घड़ी घड़ी जो हम बच्चों को कहता है, बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी इसीलिए बनो क्योंकि इस आकर्षण से तुम परे हो जाएंगे। इस आकर्षण से परे हो गए, खुद के देह के आकर्षण से परे हो गए, तो और कोई किसी की भी देह तुमको खींचेगी नहीं। देहधारियों की बातें नहीं खींचेगी तुमको, कोई पुरानी बातें नहीं खींचेगी, पराई बातें नहीं खींचेगी, ना तुम्हारे पुराने संस्कार तुमको खींचेंगे। तुम्हारी स्थिति एकदम टॉप हो जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंचा बनाना चाहता है, आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहता है ना, मैं तो नहीं बनता हूँ विश्व का मालिक, पर तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। अपने से भी आगे रखता है ना बाबा हम बच्चों को। तो इसीलिए बाबा की जो आशाएं हैं वो हम बच्चों को जरूर पूरी करनी है, ये लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। और जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्षण धीरे धीरे आप ही आते जाते हैं। ओम शांति। Thank you.
Thank you. Thank you.